अपने ही कर्मों के द्वारा तुम्हें देव पद पाना है। ये कलयुग सतयुग का संगम आज जगाने आया है। परम पिता शिव ने मानव को फिर से आज जगा।
ओम शांति। अचानक अभी अभी हमें एक बात याद आई, मधुबन वरदान भूमि में जब हम अस्पताल की सेवा करते थे तो मधुबन से कई बार वहां के क्लास आयोजन करने वाले भाई हमें बुलाते थे, पर 2 साल तक हमने ना कहा। कई सारे कारण दिए, अभी नहीं बाद में, टाल दिया क्योंकि डर लगता था। छोटा जो संगठन था उसमें बैठते थे सुबह जो हमारा होता है, पर बड़ा जो संगठन होता था, हिस्ट्री हॉल या मेडिटेशन हॉल, उसमें ऐसा लगता था सबके सामने न जाए, चुपचाप रहे, गुप्त रहे। पर एक बार फंस गए। कुछ ऐसा हो गया कि हमको हां करना ही पड़ा, तो हम बाबा के कमरे में गए। ये बात शायद हम आज तक पहली बार बता रहे हैं, और बाबा से कहा कि क्या किया जाए, हिस्ट्री हॉल में क्लास लेना है और सबसे आसान क्लास है जीवन का अनुभव सुना देना, चिंतन की आवश्यकता नहीं। फिर भी हमने बाबा से पूछा कुटिया में बैठकर क्या करें, हमें नहीं जाना है। तो बाबा ने हमसे एक बात कही, शायद वो हमारे अंतर मन की ही आवाज होगी, परंतु हमें स्पष्ट अनुभव हुआ कि ये बाबा कह रहा है। कई बार हम अपनी ही टचिंग को बाबा की टचिंग भी कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, परंतु हमने सुना उस दिन बाबा ने कहा, जब तुम बोलोगे तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज जुड़ जाएगी, जाओ। शक्ति का अनुभव हुआ और वो अनुभव वो प्रथम क्लास हिस्ट्री हॉल में मेरे ख्याल से 2013, आज इस दिव्य संगठन में, कुमारों के दिव्य संगठन में आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जो भी बातें यहां बताई जाएगी, जिन पर चर्चा होगी, ऐसे समझना कि ये विशेष मेरे लिए है, बाबा के महावाक्य, उदाहरण या जो भी बातें या कुछ एक्टिविटी यहां होगी, इस संकल्प से हर एक को बैठना है कि ये भट्टी व्यक्तिगत है, निजी है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, जीवन को परिवर्तन करने वाली है। अब तक का जो जीवन था, अब तक का जो पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ की दिशा और दशा बदलने वाली है। गुरुवार का दिवस था, एक थाली, शायद आप सबने ये सुना होगा, पर हमें सुनाने में बहुत खुशी होती है। गुरुवार का दिन, भोग का दिवस, एक थाली मधुबन से बाबा के पास गई। पैसे कमाने वाले कोई और, भोजन लाने वाले, अनाज लाने वाले कोई और, भोजन को साफ करने वाले कोई और, भोजन बनाने वाले मधुबन में कोई और, भोजन को भोग लगाने वाले कोई और, परोसने वाले कोई और। ऐसी एक थाली वतन में बाबा के पास पहुंची, कहां से? मधुबन से। दूसरी थाली सेंटर से पहुंची बाबा के पास। कमाने वाले कोई और, बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला शायद वही या कोई और। खाने वाले या परोसने वाले वही या कोई और। ऐसी यह दूसरी थाली बाबा के पास पहुंची। एक तीसरी थाली बाबा के पास पहुंची भोग की। कमाने वाले कोई और, भोजन बनाने वाले शायद वही या युगल कोई और, भोग लगाने वाला कोई और शायद वही जो कमाता है। ऐसी यह तीसरी थाली बाबा के पास पहुंची गृहस्थ से। और चौथी एक थाली बाबा के पास आई एक कुमार की। कमाने वाला खुद, अनाज लाने वाला खुद, भोजन बनाने वाला खुद, भोग लगाने वाला खुद। आप सबसे प्रश्न है कि बाबा को सबसे ज्यादा थाली कौन सी पसंद आएगी? किसकी? कुमार की, जो स्वयं कमाते हैं, जो स्वयं धारणाओं पर चलते हैं, स्वयं भोजन बनाते, स्वयं भोग लगाते, स्वयं दृष्टि देते हैं और फिर बाबा की याद में भोजन करते हैं। ऐसे जो इंडिपेंडेंट, ऐसे जो स्वतंत्र, ऐसे जो सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी, स्वयं के पैरों पर जो खड़े हैं, ऐसे जो तन मन धन से समर्पित है, ऐसी वो आई हुई चौथी थाली बाबा को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। तो यह कुमार जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है। इस संगम युग पर कुमार बनना सबसे बड़ा भाग्य है। संसार के दुखों के चक्र से मुक्त जो है, आज सुबह कहा ना, स्वदर्शन चक्र वो सारे चक्रों से मुक्त कर देता है। कोई गृहस्थी भगवान से, कोई भगत भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु हे प्रभु कुछ कर, संसार से दुखों से मुझे मुक्त कर, संसार में अथाह दुख है, गृहस्थ में अथाह दुख है, कुछ कर और मुझे छुड़ा, मैं गृहस्थ हूं कुछ कर। भगवान भी प्रसन्न हो गए, कहे कहो मन्नत मांग। वो कहता है मैं गृहस्थ हूं मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान प्रकट हो गए और क्या कहा कि मन्नत मांग। वो कहता है मैं गृहस्थ हूं मुझे कुमार बना दो। भगवान कहते हैं मैंने मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात जन्नत, कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र, माया जीत, प्रकृति जीत, संसार के आधार मूर्त, संसार के उद्धार मूर्त, संसार को राह दिखाने वाले। और जो संसार को राह दिखाने वाले हैं वो खुद भटक नहीं सकते, और जो संसार को जगाने वाले हैं वो खुद सो नहीं सकते। इसलिए जागो युवा, जागो, स्वयं से बात करनी है, हे योगी जाग। इस ब्राह्मण जीवन में चलते 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 यदि पुरुषार्थ सो गया है, यदि अंदर बैठा तपस्वी सो गया है, यदि अंदर बैठा वो महायोगी सो गया है, तो समय है। अब ये भगवान कह रहा है। किसी अव्यक्त वाणी में भगवान ने कहा था, बाबा के महावाक्य है, कुमारों को अंतिम चेतावनी बाप दादा देते हैं, विष का धंधा बंद करो। जन जन आत्मा भोग में डूबी रही, यदि भगवान को पा लिया, यदि भगवान का बन गए और उसके बाद भी भोगी ही जीवन रहा, तो तप कब करेंगे, तापसी जीवन कब होगा, तपस्या कब होगी। इसके लिए जागरण करना है, जगाना है आत्मा जो सोई पड़ी है। किसी वरिष्ठ बहन ने अपनी छोटी बहनों को कभी एक चित्र दिखाया और कहा कि बताओ इस चित्र में क्या है। वो चित्र था कुंभकर्ण का सोया पड़ा था और ब्रह्मा कुमारी अमृत डाल रही थी, एक कान से और दूसरे कान से निकल रहा था। बड़ी बहन ने पूछा कि बताओ इस चित्र में क्या है विशेष। बहनों ने कहा इसमें क्या विशेष, ये तो हम रोज समझाते हैं सबको, कुंभकर्ण संसार की आत्मा है, लेटी पड़ी है, हम ज्ञानामृत डाल रहे और ज्ञान बह रहा है। बड़ी बहन ने कहा ध्यान से देखो ये विशेष चित्र है, कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है। क्या लगा है? बैच। वो संसार की आत्मा नहीं है, वो ब्राह्मण ही सोया पड़ा है और ब्राह्मण के ही एक कान में ज्ञान जा रहा है और दूसरे से बाहर। कहीं ये कुंभकर्ण मैं तो नहीं? जो सो चुका है विस्मृति की नींद में, गफलत की नींद में, अज्ञान की नींद में, अविद्या की नींद में, विकार की नींद में, डिजिटल स्लीप में, लौकिकता की नींद में, धन की नींद में, लालच की नींद में, पद की नींद में, नाम मान शान की नींद में, एक नींद स्थूल है, दूसरी अज्ञान की जिसमें संसार सो रहा है, और एक है ब्राह्मणों की नींद, वो है विस्मृति की नींद। स्मृति और विस्मृति के चक्कर में तो नहीं आते आज सुबह किस व्यक्त मुरली, मैं कौन ये पहली, मैं कौन इसे याद करो तो समर्थ बन जाएंगे। तो आज स्वयं को जगाना है। जो दूसरों को जगाने वाले वो स्वयं सो नहीं सकते। शास्त्रों में जब राम का रावण से युद्ध हो रहा था और रावण अब हार रहा था, एक एक करके उसके सारे सिपाही हार रहे थे, तब उसे याद आई अपने भाई की, जो कि शक्तिशाली है, विशाल काय है, परंतु जो 6 मास सोता था। कुंभकर्ण उसको जगाने के लिए 5 उपाय किए गए थे, उन्हीं 5 उपायों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो अपने आप को मैं कहां हूं, किस नींद में सोया हूं, इसका चिंतन करना है। पहली नींद बताई विस्मृति की नींद, स्लीप ऑफ फॉरगेटफुलनेस। दूसरी नींद बताई आलस्य की नींद। तीसरी नींद अलबेलेपन की नींद। चौथी नींद गफलत की नींद, गलतियों पर गलती किए जा रहे, पता है ये श्रीमत नहीं है, परंतु फिर भी रोक नहीं पा रहे, क्योंकि फोर्स इतना अधिक है कि हावी हो रहा है, पता चल रहा है ये संबंध ठीक नहीं, पता चल रहा है ये देखना ठीक नहीं, ये सुनना ठीक नहीं, परंतु कोई है जो बांधे हुए और खींचे हुए है, जकड़े हुए है चेतना को, गलती, बड़ी गलती, गफलत की नींद। अगली है काम की नींद, द स्लीप ऑफ लस्ट, सूक्ष्म है, काम का संबंध कामना से है, काम का संबंध कामना से, कामना का संबंध आसक्ति से, आसक्ति का संबंध आकर्षण से, आकर्षण का संबंध अच्छा अच्छी लगती है से, देह से कोई लेना देना नहीं, परंतु जो अच्छा लगता है और जिसके गुण अच्छे लगते हैं उसकी फिर देह भी अच्छी लगने लगेगी। योगी का मोह, योगी की दृष्टि, योगी की बुद्धि संसार की आत्माओं में नहीं जाती है, योगिनियों में जाएगी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों में, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारियों में। काम की नींद, धन की नींद, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और कमा लूं, और कमा लूं। अभी अभी मुरली में आया था, बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा के हम लॉटरी ले ताकि हम यज्ञ में आपकी सेवा कर सके। क्या कहा था बाबा ने, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लॉटरी और ना ही ऐसा धन, गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा, पसीने से जो पैसा आएगा वो यज्ञ में सफल होगा। किसी का शोषण कर झूठ मार्ग पर चलकर, जिसका आधार असत्य है, जिस धंधे में झूठ बोलना पड़ रहा है, श्रीमत को छोड़ना पड़ रहा है, और जिस व्यवसाय और कार्य में छल और कपट करना पड़ रहा है, और जिस व्यवसाय में ज्ञान और योग ही छूट रहा है, ऐसा पैसा भगवान को भी नहीं चाहिए। धन की निद्रा, द स्लीप ऑफ वेल्थ। अगली है पद की निद्रा, पोजीशन चाहिए, संसार में बड़ा कोई पद चाहिए, ये बने हैं अब वो बनना है, ये भूल ही गए कि भगवान ने क्या बनाया, क्या ब्रह्मा कुमार से बड़ी और कोई डिग्री इस संसार में है। तपस्वी कुमार संसार की सबसे बड़ी डिग्री है, इसके सामने सभी डिग्रियां शूद्र है। उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है, सहज चरणों पे आकर गिरे तो ठीक। लक्ष्य यदि उसको प्राप्त करके भगवान की सेवा करने का है तो भी ठीक। लौकिक पढ़ाई पढ़ रहा है परंतु लक्ष्य हो कि इस लौकिक पढ़ाई से अलौकिक प्रत्यक्ष हो। हमें याद है जब हम लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे थे, मन में ऐसा वैराग था कि सब कुछ मिथ्या नजर आता था, और उस पढ़ाई को भी बार बार छोड़ने का संकल्प आता था। तब एक बड़ी बहन जी ने कहा था, यह पढ़ाई तुम चलने दो, तुम्हारे लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, तुम्हारे लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा। ये यदि लक्ष्य रख कर कोई चले तो ठीक, नहीं तो उस लौकिक पढ़ाई में, उस लौकिक पद की कामना में व्यक्ति भटक जाएगा, और वो ऐसी निद्रा है कि जब उठेगा, जब जागेगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। फिर है नाम मान और शान की निद्रा। एक कुमार है, दिन रात सेवा करता है, बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारी सेवाएं की, इतनी सेवाएं की, सब कुछ छोड़कर सेवाएं की, और जब सेवा में सफलता प्राप्त हुई और फिर बहन जी ने आभार प्रदर्शन किया और सबका नाम लिया और हमारा लिया ही नहीं, तो फिर कुमार आकर कहते हैं हमको दुख हुआ, हमने भी तो बहुत सेवाएं की, हमारा तो कोई रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन, इस यज्ञ में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट्स में जमा हो रहा है, कोई कुछ कहे या न कहे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और ना ही हमारी सेवाएं एप्रिसिएशन के लिए है। और जितना हो सके अपनी सेवाओं को निष्काम कर देना, सेवा की और भूल गए, उसका कोई चिंतन नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं, उसकी कोई, अगला है डिजिटल स्लीप। ये क्या होती है? ये लेटेस्ट है, अत्यधिक आधुनिक मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, इनमें से किसी एक में भी डूब जाना, फंस जाना, खो जाना, समा जाना, और हमारा जो ज्ञान और योग और सेवाओं का समय है वो ये चीजें खींच रही है, और हमारा जो अमृत वेला कम शक्तिशाली हो रहा है क्योंकि रात इनका आकर्षण ज्यादा है, रात के सन्नाटे में इनकी आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इंग्लिश में कहते हैं सिबिलेंस ऑफ नाइट, वो जो आवाज आती है ना रात में, वैसी ही डिजिटल की भी आवाज वैसी ही है जो आत्माओं को खींचती है। ये सोचना है अमृत वेला भगवान से मिलन मनाना है या इन साधनों से मिलन मनाना है रात को, तो ये लगभग 9-10 प्रकार की निद्रा है। ब्राह्मणों की नींद, स्वयं को देखना है मैं कहां हूं, मैं कौन सी नींद में सोया हुआ हूं, कौन जगाएगा, खुद ही जगाना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, आनंद रो रहा है, महात्मा बुद्ध शैया पर है, शरीर छोड़ने की अवस्था में है, आनंद कहता है मैं क्या करूं, अब हमारा क्या होगा, आप चले जाओगे तो हमें कौन शिक्षा देगा, हमें कौन राह दिखाएगा, वो कहते हैं अपना दीपक खुद बनो, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, अप दीपो भव, किसी का सहारा नहीं लो, निराधार भव। तो हम बात कर रहे थे जागरण की, अवेकनिंग की। होश की, चौकस होने की, पुनः स्वयं को जगाना है। तो हम बात कर रहे थे कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को जगाने के लिए पांच चीज, वाल्मीकि रामायण में एक ही बात का वर्णन है, तुलसी रामायण में दो तीन बातों का वर्णन है, संसार में जो प्रवचन करने वाले हैं वो बहुत सारी बातें बताते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे कैसे जगाएंगे, कैसे जगाएंगे? एक कमरा है जिसमें एक व्यक्ति सो रहा है, अब उस व्यक्ति को उठाना है तो कैसे उठाएंगे? सबसे पहले पानी डालना है, स्प्लैश वाटर। चेतना सो गई है, प्रभु प्रेम का जल धार बहनी चाहिए, परमात्मा प्रेम की छिड़कना है पानी स्वयं के आत्मा के चेहरे पर, ताकि ये आत्मा जागे। बैठना बाबा के सामने और कहना कि मैं क्या करूं जिससे ईश्वरे अनुराग विषय विराग हो जाए, क्या हम करें कि जिससे तुझसे प्यार बढ़ जाए। क्यों संसार अब तक इतना खींचता है, क्यों देह और देह की दुनिया और देह की इच्छाएं और देह की तृष्णाएं और देह की वासनाएं और देह की प्राप्ति और देह का आकर्षण और देह की वस्तुएं और देह के धर्म और देह के संबंध अब भी खींच रहे हैं, क्यों तुम नहीं ऐसे खींचते? साकार मुरलियों में आता है, तुम्हें बाप से मिलने ऐसे आना है जैसे किसी स्त्री का पति खो गया था और बावरी सी निकलती है गलियों से जब उसे पता चल जाता है उसका पति आया है। ऐसा बावरापन, ऐसी दीवानगी। उस एक साजन के लिए क्यों नहीं? क्या कारण है? क्या मैं करूं कि जिससे मेरा प्रभु प्रेम बढ़ जाए? हर एक अपनी डायरी में यह प्रश्न लिखे कि मैं ऐसा क्या करूं। बाबा से पूछना है सीधा, देहधारियों से बहुत प्रश्न पूछ लिए, अब सीधा उससे पूछो जिससे प्यार करना है कि मैं अभी जितना प्यार कर रहा हूं तुमसे क्या करूं ये प्रेम असीम हो जाए, डबल हो जाए, दुगुना तिगुना हो जाए। और क्यों नहीं बढ़ रहा है? कौन है जो तेरे और मुझ में, मेरे बीच है, और जो भी होगा उसको क्या करना है? हटा देना है। सन्यासी रामायण का एक दूसरा अर्थ लेते हैं। राम जी आगे चल रहे, सीता पीछे है, उसके पीछे लक्ष्मण। दो मार्ग है राम तक पहुंचने के लक्ष्मण के, एक भक्ति मार्ग, एक वैराग का मार्ग। भक्ति मार्ग कहता है सीता की शरण में चले जाओ, सीता आदि शक्ति आदि देवी है, उसकी शरण में चले जाओ तो राम तक पहुंच जाओगे। वेदांत कहता है कुछ और, सीता माया है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, तलवार निकालो और सीता को ही काट दो अगर राम तक पहुंचना है, क्योंकि सीता नाम और रूप है, क्योंकि सीता मिथ्या है, परछाई है ही नहीं। जो माया मेरे जीवन में है, जो लग रहा है ये आकर्षण है, वास्तव में आकर्षण नहीं, वास्तव में सत्यता उसमें नहीं। देहिक सुख में कभी भी परम सुख मिल ही नहीं सकता, जो भास रहा है वो भ्रांत सुख है। इल्यूजन ऑफ ब्यूटी, लग रहा है पर है नहीं, भ्रमित हो रही है चेतना, मृग तृष्णा है, विलो द विप्स ओएसिस। ऑप्टिकल इल्यूजन, नजर का धोखा, फार्स। तो ये प्रश्न है कि क्या मैं करूं जिससे मेरा भगवान से प्यार बढ़ जाए। वो जो भगत थे वो भगवान को जानते नहीं थे, परंतु दिन रात उसकी याद में रहते थे, उससे इतना प्यार। वो मीरा, उसे पता नहीं था भगवान कौन है, पर कृष्ण के लिए पागल हो गई थी। इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी शक्ति कहां से आई उस राजस्थान में, जब कहां, जब जहां कभी घूंघट नहीं उठा। इतना फोर्स कहां से उसमें आया है कि गलियों में नाचने लगी। कौन सी शक्ति थी उसके पास? और वो लोग उसे समझ नहीं पाए, कैसे समझ पाएंगे? उसकी स्थिति वैराग्य की परम अवस्था थी। जो भोग में डूबे हुए हैं वो वैरागियों को कैसे जान पाएंगे? उसे तो कोई योगी ही जान सकता है, एक योगी ही योगी को जान सकता है। इसके लिए जब भी हमारी आंखों के सामने कोई त्यागी और तपस्वी आत्मा आ जाए, हमारे पास वो आंख हो जान लेने की, पहचान लेने की कि ये जो आत्मा है केवल इस जन्म की योगी नहीं है, जन जन तपस्या की है इसने, तब कहीं जाकर ये सम्मुख जो है दिख रहा है। उसी भाव से एक दो को देखना। सुबह कहा ना, इस ब्राह्मण परिवार में एक एक, ये सर्वश्रेष्ठ परिवार है, ऊंचते ऊंच परिवार है, भगवान का चुना हुआ, रचा हुआ यह परिवार, ये मंजूषा, ये बगिया, ये फुलवाड़ी। तो सबसे पहले क्या डालना है? पानी छिड़कना है। कौन सा पानी छिड़केंगे? परमात्मा प्रेम का पानी। कहां से लाएंगे परमात्मा प्रेम? उसी से लाओ जिससे प्रेम करना है, उसी से पूछो, उसी के सामने समर्पण हो जाओ। उसी के सामने रोना, उसी से कहना, उसी के सामने तड़प, वो व्याकुलता, जैसे संसार के लोगों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए व्याकुलता है, वैसी परमात्मा के लिए तड़प। भक्ति में कहा जाता है जब तीन प्रेम एक हो जाते हैं और भगवान की ओर डायरेक्ट हो जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, तब वो भगवान प्रकट होता है। उतना ही प्रेम जितना एक मां को अपने बेटे से है, उतना ही प्रेम जितना एक लोभी, एक लालची व्यक्ति को धन से है, और उतना ही प्रेम जितना एक कामी पुरुष को स्त्री की देह से है। इतने तीनों प्रेम जब एक हो जाए और भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, तब प्रभु प्रकट होंगे। क्या हमारे हृदय में ऐसा अगाध, इंडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय, अकल्पनीय, अव्याख्य प्रेम है जिसकी व्याख्या न की जाए? पहले वो भरना है जल। दूसरा, कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया गया था? आवाज, ढोल बजाए गए थे उसके कानों में, फिर भी नहीं जागा था वो। शंखनाद, ज्ञान के ढोल, ज्ञान की आवाज, ज्ञान का शंखनाद। और वो ज्ञान का शंखनाद केवल बैठकर मुरली सुनने से नहीं होगा, उस मुरली का जब तक चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा, आपस में चर्चा नहीं होगी, तब तक आत्मा जागेगी नहीं। आवाज आना चाहिए, ढोल बजने चाहिए, नगाड़े बजने चाहिए। बाबा नगाड़े बजने को कहते हैं बाहर की आत्माओं के लिए, पहले खुद ही खुद के लिए नगाड़े बजाओ कि हे योगी जाग। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन जाग, किसका चिंतन कर रहा है? काम का। राम का चिंतन करने का समय है और बुद्धि काम में जा रही है, जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। तब तक नहीं उठना, तब तक नहीं रुकना, तब तक जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। अराइज अवेक, खुद खुद को जगाना है, खुद ही खुद के लिए ढोल बजाने हैं, ताकि उस ढोल से नींद फिट जाए। चिंतन की नई नई विधियां खोजनी है मुरली की। रोज एक चार पेज की मुरली हाथ में आती है, क्या करें इसका? डायरी में पॉइंट्स नोट कर दें और पूरा काम, या कुछ और? हर दिन की मुरली से कम 5 टॉपिक्स निकालने हैं सबको। बहुत मुरलियां लिख ली, डायरियां भर गई, कमरे भर गए, अब टॉपिक्स लिखो खाली। ईश्वरीय परिवार, यह दूसरा होमवर्क आपको दे रहे हैं। इस ईश्वरीय परिवार की 108 विशेषताएं। किसी एक बहन ने 200 से भी ऊपर ज्यादा विशेषताएं लिखकर हमको भेजी है, तब बुद्धि बिजी होगी। तब यहां से नीचे जा रहे हो तो बुद्धि उसमें लगी रहेगी कि विशेषता क्या है इस परिवार की। यहां से कहीं जाए और वहां वेट कर रहे, गाड़ी का वेट कर रहे, ट्रैवलिंग में है, चिंतन करते जाना है। बुद्धि ज्ञान के चिंतन में बिजी रहना, अर्थात शंखनाद, अर्थात आवाज, अर्थात ढोल बजाना। तब आत्मा जागेगी, नहीं तो इस आत्मा को आदत है सोई हुई है, ऊपर ऊपर से चल रहा है। अमृत वेला किया, मुरली क्लास गए, महावाक्य लिखे, मीठे बच्चे, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, डायरी बंद हुई, बाजू में हुई, फिर थोड़ा सा डोलना चालू हुआ, और फिर मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, फिर से जागरण, फिर से डायरी ली, और फिर से धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, 2 नंबर, वरदान लिखा, स्लोगन लिखा, डायरी बंद हुई, डायरी बैग के अंदर, अब कल मिलेंगे, डायरी से कहा कल। तब तक बिल्कुल मुंह नहीं खोलना। अगर ये गति है और ये पुरुषार्थ है तो वो ज्ञान हमारी चेतना में अंदर कैसे इंटर पेनेट्रेट करेगा, भेद नहीं देगा चेतना को, वो ऊपर ऊपर रहेगा। मुरली और हमारे विचार एक हो जाए, आवाज चाहिए, तो क्या करेंगे? रोज की मुरली से 5 टॉपिक्स। मुरली क्लास में बैठते रहते, मुरली लिखना बंद, खाली टॉपिक्स लिख लिया। अब ये जो टॉपिक्स है उसकी जो लिस्ट है, चाहे मोबाइल में लिखो या डायरी में लिखो या छोटे से पेज पे, वो जेब में, और सारे दिन भर अब एक टॉपिक ले लिया, ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या क्या है, सोचना चालू। हमको याद है एक बार हम नक्की लेक में जा ही रहे थे, तो कोई एक भाई माउंट का, वो एकदम मिल गया, अरे डॉक्टर साहब पहचाना, वो इतना, उसकी कभी माताजी भर्ती थी और थोड़ी खराब हालत थी, वेंटिलेटर भी थी, बाद में बच गई थी। तो कह रहा था मुझे पहचाना, हमारी माताजी एडमिट थी और आपने बचा दिया था। तो हमने कहा ठीक, हाँ हाँ इतने आते रहते जाते रहते, तो कब एडमिट थी पता नहीं। तो उसने एक वाक्य कहा, ऐसे ही कह दिया कि आप ना होते तो मेरी मां मर जाती, और वो चला गया। हम निकल गए नक्की राउंड के लिए और मन में ये संकल्प किया, बाबा यदि तुम ना होते तो मेरा क्या होता, और चिंतन चालू। टॉपिक दे दिया उसने, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। और जब वो पूरा हुआ तो बहुत सारी, ढेर सारी पॉइंट्स आ गई। तो क्या करना है? टॉपिक लेना, एक एक टॉपिक पर चिंतन करते रहना दिन भर, नहीं तो बुद्धि पास्ट में जाएगी, नहीं तो बुद्धि फ्यूचर में जाएगी, नहीं तो बुद्धि वर्तमान जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसका ही चिंतन करती रहेगी। कोई तो एक आया है जो तंग कर रहा है, कोई साथी है या कोई भी है। जब बुद्धि के पास लक्ष्य है काम दिया हुआ है, ये करना है, तो फिर वो यहां वहां नहीं जाएगी। तुरंत उसको याद दिलाना, अरे मुझे लिखना है, मुझे ईश्वरीय परिवार की 108 पॉइंट्स लिखनी है, कहां से लाऊं? पहले तो सिर जाएगा, माथे पर हाथ जाएगा। तो दूसरा क्या है? आवाज। तीसरा, कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया गया था? भाला, शस्त्र, अस्त्र। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 1000 हाथी उसके शरीर पर दौड़ाए गए थे तब वो जागा, बस इतना ही वर्णन। तो आत्मा को जगाने के लिए भाले चुबाने पड़ेंगे वैराग्य, तब तक वो जागेगी नहीं। जब भरतहरि को यह पता चला कि जिस पत्नी से मैं इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, वो तो कुछ और ही निकली। किसी ऋषि मुनि ने, कहते हैं गोरखनाथ ने, भरतहरि को फल दिया और कहा कि अपनी जो प्रिय पत्नी होगी, वह व्यक्ति होगी, उसको दे देना। उसने अपने पत्नी को दिया, पर पत्नी का प्यार मंत्री से है, उसने मंत्री को दिया, परंतु मंत्री का प्यार नर्तकी से है, नर्तकी का प्यार सिपाही से है कोई, उसने उसको उस सिपाही का प्यार एक वेश्या से है, उसने वेश्या को दे दिया, और वेश्या ने सोचा मैं इसका क्या करूं, राजा को वापस लाके दे दिया। राजा ने सोचा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मैंने अत्यंत मेरी जो प्रिय पत्नी है उसको दिया था, और उसे ये पूरा चक्र पता चलता है और तुरंत वैराग आता है और संसार छोड़कर चला जाता है। जब वो राजा था, इतना भोगी राजा था, उस भोग की अवस्था में उसने किताब लिखी थी सौंदर्य शतकम, और जब वैरागी हुआ और वैरागी बन गया तब एक नई दूसरी किताब लिखी भरतहरि वैराग्य शतकम। अब सभी कुमारों के लिए एक तीसरा काम, जिसने ये किताब नहीं पढ़ी है उसको ये किताब पढ़नी है। कहां से ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन उपलब्ध है। वैराग के 100 श्लोक, किताब का नाम है भरतहरि वैराग शतकम, ऑनलाइन इंग्लिश में अवेलेबल है। एक एक श्लोक पर एक एक क्लास हो सकता है, इतनी वैराग की उसमें बातें हैं कि व्यक्ति उसको पढ़कर किसी भी व्यक्ति से अटैच नहीं रह सकता, धधकता वैराग जागेगा। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है उसने, प्रार्थना की है भगवान से, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं जमीन पर सोता हूं, कुछ पहनता नहीं, कंदमूल फल खाता हूं, सब कुछ, सारे उपभोग, सारे संसार के त्याग कर दिया मैंने, फिर भी ये काम की वासना मुझे नहीं छोड़ती, हे प्रभु मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे श्लोक उसमें है। रूपे जराय भयम्, जो रूपवान है उसको जरा का भय है, बुढ़ापे का भय है। वृत्त नुपालत भयम्, जिसके पास बहुत धन है इनकम टैक्स का भय है। कुले च्युति भयम्, जो कुलवान बहुत कुलीन है उसके उसको कुल के गिरने का भय है। इस संसार की हर वस्तु में भय है, सर्व वस्तु भयान्वितः वैराग्य नेणा मृणा भयम्। एक वैराग्य ही ऐसी चीज है जिसमें भय नहीं। तो वैराग्य भाले तलवार अस्त्र चुबाने हैं इसको, ताकि ये जो वस्तु को पकड़ के है, आत्मा ने पकड़ के रखा है, जकड़ा हुआ है, ऑक्टोपस ग्रिप ऐसे पकड़ा हुआ है पूरा, छोड़ने को तैयार ही नहीं, और बाबा के महावाक्य आकर गिर पड़ते हैं, बिना सामने खड़ा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इधर से सुना और इधर से गया, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी, बाप आए हैं तुम सबको ले जाने के लिए, सब मच्छरों सदृश सरसों मिसल पिस जाएंगे, टिड्डियों मिसल मच्छरों सदृश बाप तुम्हें ले जाने आए। पर यह बातें इतनी बार सुनी है कि सुना और गया, और विनाश की तो कहीं चर्चा ही नहीं है आजकल, पहले थी कभी, और लोगों को वैराग आ गया था विनाश की बातों से। अभी विनाश थोड़ा कम वैराग इंड्यूस करता है, इसके लिए चुभाना है स्वयं को संसार की व्यर्थता के विषय में, बताना है। वैराग की किसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, केवल दो शब्दों में सभी लिख के रखेंगे, वैराग अर्थात संसार असार देह मिट्टी, संसार असार और शरीर मिट्टी, मिट्टी से प्राप्त सुख कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, मृण्मय चिन्मय को तृप्त नहीं कर सकता, मड सॉइल आत्मा को भर नहीं सकता, अंत वाले अंतहीन वाले आदि अंत वाली अनंत आत्मा को भर नहीं सकते। तो तीसरा वैराग, स्वयं के जीवन को देखना है और मेरे क्या क्या राग है, मेरे जीवन में कौन सी आसक्तियां है, किस बात को मैंने पकड़ रखा है, और ये एक ही बात जिसको मैंने पकड़ रखा है यही मेरे पुरुषार्थ में अंतिम बाधा है, द लास्ट बैरियर। ये कौन सी वो बाधा है, क्यों मैं इसको पकड़ के रखा हूं, क्या वो व्यक्ति है, संबंध है, कोई सेवा तो नहीं है, सेवा परंतु हो सकता है वो सेवा ही बंधन और सेवा ही बाधा बन गई है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ हिल रहा है और हम पर खुश है क्योंकि ये सेवा है, परंतु सेवा ही बंधन का कारण तो नहीं, व्यक्ति संबंध सेवा कोई जॉब, जो जॉब हम कर रहे हैं जो बिजनेस हम कर रहे हैं कहीं वही बंधन का कारण तो नहीं, अगर ऐसा है तो वी नीड टू रिवाइज रीचेक री अंडरस्टैंड री रिफ्लेक्ट। तो तीसरा कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या चाहिए, भाले शस्त्र अस्त्र वैराग्य। चौथा उसको पांचवा रखेंगे, वो पावरफुल है, उसी से तो वो जागा था, उसके पहले एक जगाने के लिए क्या किया जाए गया था, क्या क्या आवाज हो गया ना, वो पांचवा नंबर उसको लास्ट में रखेंगे, उसी से जागा था। हाँ हाँ हिलाना, वो हो गया वैराग में, हिलाना डुलाना चुबाना वो सब उसमें आ गया, और क्या किया गया था। हाँ क्या क्या स्मृति, वो तो सोया है, उसको कौन, वो हम स्थूल का पूछ रहे पहले, वो सोया पड़ा है। यदि कोई व्यक्ति अंधकार में सोया है सुबह सुबह तो सबसे पहले पर्दा क्या करते ताकि प्रकाश आए, फ्लैश लाइट, तो व्यक्ति जागता है। प्रकाश चेहरे पर गिराना, लाइट समझ का प्रकाश, किसका प्रकाश, समझ अंडरस्टैंडिंग। मुरली तो पढ़ ली, मुरली है यहां पर आज की, आज की मुरली तो है पढ़ ली, पर ये जो मुरली है समझी कितनी, आज की ही मुरली ले लो, सारे विश्व भर में जितने सेंटर्स होंगे, जितने ब्राह्मण होंगे, सबने सेंटर पे सुनी होगी या इंटरनेट पे सुनी होगी, मोबाइल पे सुनी होगी, ट्रैवलिंग करते करते किसी ने सुनी होगी, किसी ने नींद में सुनी होगी, किसी ने सुनी नहीं तो पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा उसके साथ। कोई होंगे ऐसे महारथी जो कहते हैं यह मुरली तो छोटे बच्चों का काम है, हम तो अभी ज्ञान की परम अवस्था में हैं, हमें रोज रोज पढ़ने की बताओ जरूरत नहीं है, हम उसके स्वरूप है। इसके लिए भक्ति मार्ग में कहावत है, ज्ञान अज्ञान क्या है? अंधकार। अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार में भटकाता है और ज्ञान महाअंधकार में भटकाता है, क्योंकि ज्ञान अहंकार को लेके आता है। ऐसा ज्ञान जो अहंकार को लाए वो सबसे बड़ा महाअंधकार है, अज्ञान से भी बड़ा अंधकार है वो। तो हमारे पास ये मुरली है, चार पेज साढ़े तीन पेज जो भी, रोज ये मुरली आती है और हर एक को पता है एक एक वाक्य लाखों का है। कितना हम ने इसको धारण किया, और धारण करने के लिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, एक एक वाक्य को समझना पड़ेगा, इसमें क्या कहा है, अर्थ क्या है। अंडरस्टैंडिंग का प्रकाश जब तक नहीं तो ऐसे कितनी मुरली आई और चली गई, आज थी सुबह सुनी, थोड़े पॉइंट्स लिख दिए, ये बंद हो गई और दूसरे दिन नया माल, नया वखर, चौप चीनी, चोचो का मुरब्बा कुछ दिन पहले आया था, हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड, मैंने इसको कितना समझा। और ये पीएचडी लेवल की स्टडी है मुरली, अव्यक्त मुरली, इतना आसान नहीं समझना इसको, यूनिवर्सिटी का कोर्स है ये। इसको समझने के लिए पाठ चाहिए, पाठ। भक्ति मार्ग में पाठ करते हैं, पाठ करना अर्थात गीता का पाठ होता है, पाठ अर्थात एक बार नहीं कई बार, रामायण का पाठ होता है, भागवत का पाठ करते हैं, हरि पाठ, ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, सुखमनी का पाठ करते हैं, जपू जी साहिब का पाठ करते हैं, बाइबल बार बार पढ़ी जाती है, कुरान पूरा रमजान पाठ चलता है, रिसाइटल, यह सबसे बड़ा शास्त्र है, आज ही की मुरली में आया है। ये जो तुम ईश्वरीय परिवार में पढ़ाई करते हो, ये जो तुम्हारी शिक्षा है भक्ति मार्ग में, संसार की आत्माएं तुम्हें प्यार करती है, उसका यादगार क्या है? गीता। जहां पर ये जो चरित्र हो रहे हैं उसका यादगार क्या है? भागवत। और ये जो तारामंडल है वो भी तुम्हारा ही यादगार है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। आया है ना आज? इस तरह से मुरली से पॉइंट्स को खींच के निकालना है, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, फिर मुरली इधर रह जाएगी, फिर वो पॉइंट इधर फिट कर देना है, ताकि जब काम आए तब उसको प्रयोग कर सके। कहां से आया वो बीच में कहीं से भी आ सकता है, और वो तब आएगा जब हमने समय दिया है इसको पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए। खाली ये बैठकर खुश नहीं हो जाना कि हम सेंटर गए थे और हमने मुरली सुनी, सुना पर समझा क्या, सुना पर डायरी में नोट कर दिया, और सुना पर याद कितना है, और याद करने के बाद में भी प्रैक्टिकल में उसका क्या किया? कुछ भी नहीं। जीवन तो वही चल रहा है, धक्का नहीं लग रहा है कोई भी मुरली से। समझ, उसके लिए इस संकल्प से जाओ कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं समझा है, आज चालू करता हूं समझना, अभी छोटा सा बच्चा हूं, आज मुझे समझना है ये है क्या। और जैसा छोटा सा बच्चा होता है आश्चर्य से भरता है, ये क्या है, वो पूछेगा ये किस चीज से बना है, ये श्री कृष्ण इसमें कैसे चला गया, ये किस चीज से बना है, ये आकाश नीला क्यों है, ये टमाटर लाल क्यों है, ऐसे ऐसे प्रश्न होते, पानी गीला क्यों है। हम कहेंगे चुप, उसकी क्यूरियोसिटी को, उसकी उत्कंठा को दबा देते हैं, वो बच्चा मर जाता है फिर और बड़ा प्राउड आदमी बन जाता है जो सोचता है हमें सब पता है। फिर से रिटर्न बैक टू चाइल्डहुड, इस भाव से पढ़ो कि ये क्या है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार को देख रहे, कभी परिवार शब्द के बारे में आज तक ऐसा संकल्प आया कि इस परिवार शब्द का एक नया अर्थ इस मुरली में बाबा ने बताया है, वार से परे। कभी हमने सोचा था कितनी नई बात है, कैसी उत्कंठा होनी चाहिए, जैसा छोटा सा बच्चा उसको रेत में वो सीप मिल जाता है कैसी खुशी होती है उसको, और छोटे जो वहां से टहल रहे हैं बड़े वो कहते बकवास चाइल्ड्स प्ले, उनको कोई उत्सुकता नहीं है, वो रंगीन पत्थर उठाता है और जमा करता है अच्छे अच्छे पत्थर, बड़ों को ये सब चीजों में फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते बचपना है, बचपना ही होना चाहिए इन बातों में, बचपन के दिन याद करो, ईश्वरीय बचपन भुलाना देना। तो बचपन में चले जाओ, जब ज्ञान में आए थे तो कैसी लगन थी। जगदीश भाई जी सोनीपत से मुरली सुनने शक्तिनगर दिल्ली जाया करते थे, और एक बार जब ट्रेन छूट गई तो वो जो मालगाड़ी कोयले वाली उसमें बैठकर गए मुरली सुनने। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणंति ते भुरिदा जना। गोपिया कृष्ण से कहती है हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, ये जो तेरी वाणी है, ये जो तेरी मुरली है, ये तव कथामृतम अमृत है। तप्त जीवनम, हम तप रहे हैं विकारों में, कवि बिरडितम कवियों ने जिसका गायन किया है, वेणुर मधुरा सब मधुर है तेरा, ये वो वाणी है, ये तेरी कथा है, हरि कथा अनंत हरि अनंत। ऐसा प्यार इससे होना, ये कागज नहीं भगवान के मुखारविंद से निकले टपके हुए रत्न है, बुद्धि रूपी झोली में बर्तन में भर देना है। तो समझ का प्रकाश, और लास्ट कुंभकर्ण अभी भी जागा नहीं, फिर अंतिम उपाय, द लास्ट सॉल्यूशन, सुगंध। बहुत सारे व्यंजन लेके आए जाते हैं, इधर से रखे जाते हैं, उसके नासा पुटों में के पास रखे जाते हैं, तब वो सुगंध से अल्टीमेटली तब जागता है, ऐसा दिखाया है। पवित्रता की सुगंध, आत्मा को याद दिलाओ तुम पवित्र थी। ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, ये जो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है इधर है, ऐसी पवित्रता मुझ में भी थी, निर्विकार, काम की अविद्या, देह की अविद्या, देहभान की अविद्या, ऐसी दिव्य पवित्रता मेरी पवित्रता है। ये सुगंध से आत्मा को जगाना है, तो हे योगी जागो। 10 प्रकार की नींद और ये 5 उपाय, किस कुंभकर्ण को जगाने के लिए, बैच वाले कुंभकर्ण को जगाने के लिए, व्हाइट ड्रेस पहने वाले कुंभकर्ण को जगाने के लिए, ताजलेस कुंभकर्ण, वो वाला ताज नहीं है। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था तुम ताजलेस हो। तो 5 उपाय करने हैं। पहला बताया पानी, और कोई पानी से ना जागे तो बकेट ही उड़ेल दो उसके ऊपर, वो लेके आना पड़ेगा होस जो झाड़ों को पानी तकाते ना उससे, या जो गाड़ी को धोते ना वो लास्ट है। इतना फोर्स चाहिए प्रभु प्रेम का। और प्रभु प्रेम कहां से मिलेगा? जिनमें प्रभु प्रेम है उनका संग करना, जो ईश्वरीय खुमारी में ऑलरेडी रहते हैं ऐसे प्रभु प्रेमियों का संग करना, जो ऐसे रूहानी स्पिरिचुअल पियक्कड़ इंटॉक्सिकेंट पील इंटॉक्सिकेशन से भरे हुए रूहानी खुमारी है, खुमार है, नशे में है, डोल रहे है, इतना पी लिया है कोई कोई आत्माओं ने, उनका संग करना। तो ऐसे अगर दोस्त मिल जाए तो आदत तो लत तो लगनी ही है, छूट नहीं पाओगे, एडिक्शन तो हो ही जाएगा। कौन सा एडिक्शन? परमात्मा प्रेम का एडिक्शन। तो पहला पानी डालो, जल छिड़को अपने ऊपर। दूसरा आवाज, आवाज के लिए और एक काम आपको दे रहे हैं। जो भी कुमार है और जो मिल सकते हैं, अपना एक छोटा सा एक या दो लोगों का ग्रुप, और आपस में रोज सुबह की जो मुरली है उसको डिस्कस करें। जो सेंटर पर रहते हैं चाहे बहने या भाई, दो लोग तीन लोग सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट ये चर्चा करें कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, वो कुछ बताए हम कुछ बताए, दो पॉइंट इधर से दो पॉइंट इधर से। रात को सोने के पहले का जो समय है, सबसे ज्यादा माया कुमारों को उसी समय आती है। ये जो समय है सबसे ज्यादा माया, इसके लिए ज्ञान की चर्चा। एक किताब है यज्ञ की, वार है मैं ब्राह्मण आत्मा, पढ़िए, अच्छी किताब है, बाबा के महावाक्य है। उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य लिखे हुए हैं। 10 नंबर का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, इन्वर्टेड कॉमा। चर्चा नहीं चालू है, खाली पढ़ रहे सुन रहे काम नहीं होगा। ये फिलोसॉफिकल स्टडी है, पीएचडी लेवल की स्टडी है। मेडिकल में जब स्टूडेंट्स पीजी की तैयारी करते हैं तो एक एक कमरा ले लेते हैं और दिन रात पढ़ते रहते हैं उसमें बैठकर। इतना सहज एडमिशन मिलता नहीं है, दिन रात डिस्कशन करते रहते हैं, पूरी दीवारों पर फॉर्मूले लिखे रहते हैं मेडिकल के, ऐसा डूब जाते हैं उसमें, तब कहीं जाके उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। ऐसी लगन। तो दूसरा क्या बताया? आवाज, किसका आवाज? ज्ञान। तीसरा चुबाना अस्त्र शस्त्र से। आत्मा आराम से सोई पड़ी है जागेगी तब उसको चुभाएंगे, चुभाना है उसको। आराम से मुरली चल रही, बाप आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, आहा हा हा, बात तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें परम धाम चलना है, यह संसार का विनाश होने वाला है, नींद जारी है, आहा हा हा, डोलना भी जारी है, मीठे बच्चे तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें आत्माओं का कल्याण करना है, नींद जारी है। धक्का लगना चाहिए, ये जो पतित बने हो तुम हो, ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना, तब धक्का लगेगा। तीसरा, चौथा प्रकाश, समझ का प्रकाश, अंडरस्टैंडिंग का प्रकाश, अपनी समझ को बढ़ाना है, ठीक है, अपनी जो समझ है व्यक्तियों के विषय में, परिस्थितियों के विषय में, यज्ञ के विषय में, ज्ञान के विषय में, पवित्रता के विषय में, सेवा के विषय में, स्थिति के विषय में, मुरलियों के विषय में, योग के विषय में, धारणा के विषय में, हमारी जो वर्तमान प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, समझना है, बहुत ही बचकानी है, प्रौड नहीं है, इसमें मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। मुझे इसको मैच्योर बनाना है। विवेकानंद ने कहीं कहा है, वी डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी प्रोग्रेस फ्रॉम लेसर लाइट टू ग्रेटर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाते, हम कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते हैं। तो यह समझना, वर्तमान जो प्रकाश है मेरे अंदर समझ का, कम है, मुझे इसको बढ़ाना है। इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। दो व्यक्ति है, ये खड़े हैं, ये है ए, ये है बी। दोनों का आपस में बहुत लगाव है, ठीक है, दोनों ही ज्ञान में है, ए बी और बी बी। अब ए को बी से, ए को समझ में आ गया है, मुरली सुनते सुनते, भट्टिया करते करते, ये जो लगाव है ना, ये बाधा है। अब क्या ए करे जो बी से वैराग आ जाए, आप बताओ। पर लगाव इतना जबरदस्त है दोनों का, बहुत जबरदस्त, जिगरी दोस्ती है, क्या करेंगे? सोल कॉन्शियस, ये दोनों ने बहुत सुना है, भाषण दिए इन दोनों ने मिलके, योग कराए, भटिया भी कराई है इनके लिए, छोटे मोटे पॉइंट, आत्मा समझ, बाप की याद करना, तो एकदम मतलब प्रिलिमिनरी, KG1 KG2 वाला है। इनको क्या करे, इनको समझ सारी है, फुल ज्ञान में, ये 40 साल से है या 40 साल से, आप बताओ क्या करें। वो वाली बात है, तो इनको सब पता है, पर लगाव है, मोह है, ए का बी से लगाव है। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये बोलता है मैं उसके बिना रह नहीं सकता, और वो बोलती है मैं इसके बिना रह नहीं सकता, बोलती है या बोलता है, क्या करेंगे। कैसे हटाएंगे? अवगुण, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा का दिव्य रतन ये बाबा का दिव्य रतन, बाबा ने चुना, बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बनाया, और उसके अवगुण मुरलियों में आता है, गुण देखो क्या करेंगे? हाँ, एक तो विधि है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आंखों से दूर कर दी जाती है धीरे धीरे वो भूलती जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरा, ये जो संबंध है इसके नुकसान क्या क्या है उसका चिंतन करना, निगेटिव थिंकिंग करना, दोष दृष्टि जैसे बताया, दोष हम उसका नहीं देख रहे, पर ये जो लगाव है ये मोह है, और मोह विकार है, प्रेम विकार नहीं है, प्रेम दिव्य गुण की श्रेणी में आता है, पर वो प्रेम शुरुआत में था, अब मोह बन चुका है। इस लगाव के नुकसान, इस लगाव की निगेटिव थिंकिंग, अनासक्ति कैसे उत्पन्न कर दी जाए, इसका चिंतन करना है। अवर्शन थेरेपी, घृणा नफरत उस व्यक्ति से नहीं, इस संबंध से, कि ये संबंध मुझे भी गिरा रहा है, उसको भी गिरा रहा है, उसको दुख होगा थोड़े समय के लिए, होने दो, क्योंकि वो दुख से ही उसका कल्याण होगा, क्योंकि ये दोनों, ये मोह हम दोनों को नीचे घिसा डुबा रहा है। इसलिए यदि दोनों एक दूसरे का कल्याण चाहते हैं, ये इसकी समझ कम है, मोह इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो जिसका कम है वो सोच सकता है, क्योंकि जिस पर जिसका ज्यादा है उसको बता भी नहीं सकते, परंतु नैतिक जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है कि ये काम मैं करूंगा। वैराग का, डिटैचमेंट का, अनासक्ति का, वैराग की तलवार से इस मोह बंधन को काटना है, कठिन काम है, फटाक से नहीं होगा, धीरे धीरे, पर सोचना है ये डुबो रहा है, फंसा रहा है, और हमें तो संपूर्ण बनना है, इसको भी और उसको भी, इसकी संपूर्णता के लिए इसके प्रति निगेटिव चिंतन। तो वैराग्य। लास्ट बताया पवित्रता की सुगंध, इस पवित्रता को बढ़ाना है। जागो हे योगी, जागो। ओम शांति।